पहला राजा अध्याय 19 पद 1 से लेकर 3 तक। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख, एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा का बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। शायद वो इतना फंस गया था कि आगे नहीं जा सका। अध्याय 19 पद 4। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊं के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। ये सब घबराहट की दशा में हुआ। उसका मन विचलित था। ऐसा तभी होता है कि जब हमारा मन विचलित होता है और हम ऐसा कुछ कह देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। बाद में हमने उसके लिए जो कहा, जिसे हम कहना नहीं चाहते थे, क्षमा भी मांगते हैं। मैं इतना परेशान था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कह रहा था। बस मेरे मुंह से यूं ही बातें निकल गई, परंतु मेरा ऐसा मतलब नहीं था। हम बहुत बार ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसे कहने का हमारा इरादा नहीं था। यही कारण है कि हमें बात करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। आप अपने बच्चों से कहते हो, घर वापस जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, परंतु वास्तव में आपका मतलब ऐसा नहीं होता है। नबी कहता है, प्रभु बस है, मेरा प्राण ले ले, प्रभु मैं और आगे नहीं जाना चाहता। यदि वो ऐसा ही करना चाहता था तो उसे भागने की आवश्यकता नहीं थी। उसे वही इजबेल के यहां रह जाना चाहिए था और इजबेल ये कार्य खुशी से कर देती, इसलिए उसका वहां से भागना जीवन की लालसा दर्शाता है। उसके वहां से भागने का कारण था कि इजबेल ने उसे जान से मारने की शपथ खाई थी। अध्याय 19 पद 5। वो जाऊं के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे इस भोजन के बाद लंबी यात्रा करना है। तब उसने स्वर्गदूत का लाया भोजन किया और फिर 40 दिन तक चलता रहा, जो बहुत अच्छा और ताकतवर भोजन था। वो इस भोजन को खाकर 40 दिन यात्रा करता रहा। अध्याय 19 पद 8। परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। सिनाई पर्वत तक वो वास्तव में इजबेल से डर कर भाग रहा था। नीचे वीरान जंगलों में सिनाई पर्वत या होरेब पर्वत, दोनों नाम उसी पर्वत श्रृंखला के हैं। यहीं पर मूसा परमेश्वर से मिला था और आज्ञाओं को ग्रहण किया। अध्याय 19 पद 9। वहां वो गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम। एलिया प्रश्न ठीक से नहीं समझा। सवाल था, एलिया तू यहां क्या कर रहा है, और एलिया ने उत्तर में कहा कि वो यहां क्यों था। उसने ये नहीं कहा कि वो यहां क्या कर रहा था, पर ये कि वो यहां क्यों था। अध्याय 19 पद 10। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। स्थितियां कितनी बदल सकती हैं। इसराइल देश ने पूर्णतः धर्म त्याग कर दिया। वे परमेश्वर को भूल गए, वेदियां तोड़ डाली और नबियों को मार डाला। मात्र एक नबी बचा है जिसको मारने के लिए वे उसे ढूंढ रहे हैं। ये बड़ा चढ़ाकर कही गई बात थी, क्योंकि वो विचलित और निराश था। निराशा और उदासी में आप किसी बात को इतना बड़ा चढ़ा लेते हैं जितना वो होती नहीं। मैं बस सहानुभूति चाहता हूं, जो एक बुरी बात है। किसी के साथ भी इतना बुरा नहीं हुआ होगा और हम स्थिति को बढ़ा लेते हैं, जैसे एलिया इसराइल की समस्याओं को बड़ा चढ़ाकर कहता है, उन्होंने तेरे सब नबियों को मार डाला और मैं ही अकेला बचा हूं। वो इतना उदास हो गया था कि उसे आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। अध्याय 19 पद 11 और 12। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, तब यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूई डोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूई डोल में ना था। फिर भूई डोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। बहुत बार हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि हम आशा करते हैं परमेश्वर गरजती आवाज में या किसी आश्चर्यचकित करने वाले तरीके से बात करेगा। तब मैं कहता हूं, प्रभु ने मुझसे बात की। उसने एलिया से कैसे बात की? परमेश्वर की आवाज गड़गड़ाहट के साथ होगी या फिर ऐसा ही कुछ और हम सोचते हैं, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा, मेरे साथ कुछ अजूबा होगा, मानो कोई आवाज मुझे कहेगी, बीप बीप बीप, दाएं मुड़ो, बीप बीप बीप, सीधा चलो, बीप बीप बीप, रुक जाओ आदि, और कुछ अजूबे वाली बात। परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया चलता हूं, ऐसा नहीं है। वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन को बड़े सामान्य रूप से लेकर चलता है। आपको पता भी नहीं चलता कि परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, क्योंकि आपको सब कुछ बड़ा सामान्य लगेगा। बहुत वर्ष पहले मैं एक चर्च में आराधना लेने जा रहा था। वहां मेरा बचपन बीता था। उन्होंने मुझे संदेश देने के लिए रविवार संध्या को बुलाया, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं शनिवार को आनंद पूर्वक गाड़ी चलाकर रास्ते में अपनी मौसी के यहाँ रात बिताऊंगा और रविवार वहां पहुंचकर सायंकालीन आराधना में प्रभु का वचन सुनाऊंगा। अतः मैं वहां के लिए चल पड़ा। मार्ग में मैंने अपनी कार की छत खोल दी और सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए कार चला रहा था। अति मनोहर दिन। मैं उस मार्ग पर बड़ा चला जा रहा था। बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, आकाश नीला और स्वच्छ था। वो बसंत का दिन बड़ा ही सुहावना था। वहां एक दंपति खड़ा था जो वाहनों से लिफ्ट मांगते हुए अपनी यात्रा कर रहे थे। मैंने सोचा, मैं तो अकेला ही हूं, क्यों ना उन्हें बैठा लूं। अतः मैंने उन्हें कार में बैठा लिया और उनसे बातें करने लगा। इस प्रकार मुझे पता चला कि वे मोंटेना के निवासी थे। मैंने पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, वे नौकरी की खोज में हैं। मैंने पूछा, आप क्या काम करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं किसान हूं, परंतु मुझे यहां कोई काम नहीं मिला है। मैंने पूछा, आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा, हम सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा, सैन फ्रांसिस्को में खेत है ही नहीं, वो तो लॉस एंजलिस के समान एक बड़ा शहर है, परंतु यहां से सैन फ्रांसिस्को तक खेत ही खेत है। میں نے ان سے کہا، میں وینچورا سے ہو کر جا رہا ہوں، وہاں بہت کھیتی ہے، اس لیے یدی آپ نوکری چاہتے ہیں تو یہی کسی ایک سمودائے میں آپ کو رک جانا چاہیے۔ بیچارے نو دمپتی اپنی جگہ میں برف سے دکھی ہو کر یہاں آئے، پرنتو انہیں کیا معلوم تھا کہ وہاں کھیت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کئی بڑے کھیت ہیں۔ میں ان سے یشو مسیح کے بارے میں باتیں کرنے لگا، انہوں نے مسیح یشو کو گرہن کیا۔ اس بیچ میری آنٹی کا گھر آ گیا تھا، اتھا میں نے پرارتھنا کر کے ان سے ودا لی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان سے پھر بھیٹ ہوگی۔ جب میں آنٹی کے گھر پہنچا تب وہ کچھ پکا رہی تھی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ میری ماتا فون پر تھی۔ میرے شرابی چاچا کو میں نے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ میری ماتا اسے سہن نہیں کر پاتی تھی۔ وہی چاچا لوٹ کر آ گیا تھا، اتا مجھے گھر لوٹ جانا پڑا۔ دوسرے دن میں شام کی آرادھنا میں اس چرچ میں تھا، اور جب آرادھنا کے بعد میں نے سمرپن کی پکار کی تو میں اس نو دمپتی کو وہاں دیکھ چکت رہ گیا۔ اس سندھیا بہت سے لوگ آگے آئے اور میں نے ان کے پاس جا کر پرارتھنا کی۔ میں اس دمپتی کے پاس گیا اور کہا، آپ سے ملنا بڑی بات ہے، میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے۔ انہوں نے چاروں اور دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ مہان بات ہے کہ انہوں نے پربھو کو سویکار کیا اور کہ وہ اب بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا، جو منشیہ ہمارے ساتھ آرادھنا کرنے آیا تھا اس کا نام جینکن تھا۔ میں، کیونکہ میرا پالن پوشن وہی ہوا تھا اس لیے میں اس کو جانتا تھا، وہ وہاں ایک ادھیکاری تھا۔ وہ آگے آیا، ان کے ساتھ پرارتھنا کی اور اپنے وچاروں کو بانٹا۔ اس نے کہا، مجھے کھیت میں کام کرنے کا ستھان مل گیا۔ اس نے ان کو رکھ لیا، نوکری اور گھر بھی ملا اور انیہ سویدائیں بھی۔ پرمیشور نے سبھی چیزوں کو ایک ساتھ رکھا۔ تب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، آپ سمندر تٹ پر گئے بنا سیدھے کیوں نہیں چلے گئے؟ کیونکہ مجھے سمندر اچھا لگتا اور وہ ایک سوبھاوک وچار تھا۔ ستیہ تو یہ تھا کہ پرمیشور کا آتما مجھ میں بات کر رہا تھا اور مجھے اس دمپتی کی اور بھیج رہا تھا جو پرمیشور کے کھوج میں تھے، پرنتو میں یہ نہیں سن رہا تھا۔ اور تب میں نے سمجھا کہ پرمیشور مجھے دشا دے رہا تھا، کیونکہ میں سمندر تٹ کو پسند کرتا ہوں اور وہ میرے راستے کے بیچ میں ہی تھے۔ مجھے اچانک ہی سمجھ میں آیا کہ یہ پربھو کا مارگ درشن تھا۔ یہ کوئی رہسیمے بات نہیں تھی، نہ کوئی گڑگڑاہٹ، نہ بجلی کی چمک، نہ آندھی، نہ بھوئی ڈول، یہ ایک پراکرتک طور پر ہوا۔ وچن کہتا ہے کہ پرمیشور بہت پراکرتک طور پر ہم سے بات کرتا ہے۔ مت سمجھو کہ پرمیشور بھوئی ڈول میں ہو کر بولے گا یا سچ میں اس کو سننا چکت کرنے والا ہوگا کہ ہمارے چاروں اور پرتھوی ڈھول رہی ہو۔ پرمیشور کو طوفان میں یا جیون کے اپدرووں کے سننا کٹن ہوتا ہے، یا جب ہمارے چاروں اور سب چیزیں ختم ہوتی پرتیت ہو۔ بہت بار ہمیں شانت ہو کر اپنے ہدے کو اس کے سنمکھ لانے کی آوشکتا ہوتی ہے، تاکہ میں اکیلا رہ کر پرمیشور کے استھر دھیمی آواز کو سن سکوں جو مجھے مارگ درشن دیتی ہے، اپنے پریم کا آشواسن دیتا ہے، اپنے ادیشیوں کو پرگٹ کرتی ہے اور مجھے شکتی اور پرمیشور کی سہایتا ملتی ہے۔ تب وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور وہی ستھر دھیمی آواز مجھ میں ہے، ایک دم پراکرتک، جیسے کہ آواز اپنے ہی ہدے سے آ رہی ہو یا من کی آواز ہو۔ सत्य तो ये है कि इस प्रकार परमेश्वर आपसे बात करता है। ये एक उत्साहित करने वाला अनुभव होता है। इस प्रकार मुझे ये पता चला कि ये विचार मेरे नहीं वरन परमेश्वर की ओर से थे। परमेश्वर ने मेरे अंदर वे विचार डाले, वो स्थाई धीमी आवाज। मेरे विचार वास्तव में परमेश्वर की वाणी थे और उस स्थिर और धीमी आवाज को सुनना कितना सुंदर है, कितना महान है। परमेश्वर ने वही सवाल दोबारा किया, एलिया तू यहां क्या कर रहा है? एलिया के अब भी सवाल समझ नहीं पाया, उसने उसी तरह से उत्तर दिया। अध्याय 19 पद 14 उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। सवाल ये था, तू यहां क्या कर रहा है? ये नहीं, तू यहां क्यों है? इसलिए प्रभु को इस परेशान नबी को ये समझाना पड़ा कि वो वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा था, वो केवल छिप रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। उसने अपने आप को निष्क्रिय बना लिया था, वो इस समय कोई सेवा नहीं कर रहा था। वो वहां इसलिए नहीं था कि उसे देखने वाला वहां कोई नहीं था। उस वीरान जंगल में परमेश्वर के लिए आने का कोई कार्य नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा था। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कुछ न करें, इसलिए परमेश्वर ने उसे फिर से आज्ञा दी। अध्याय 19 पद 15 और 16 यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इसराइल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। परमेश्वर ने उसे काम पर लगाया, परमेश्वर ने उसे गुफा में से बाहर निकाला जहां वो कुछ नहीं कर रहा था और दोबारा सेवा की आज्ञा दी। परमेश्वर चाहता है कि आपको भी आपके बहरेपन से निकालकर कुछ करने के लिए वापस ले आए कि आप उसके लिए उपयोगी हो। परमेश्वर ने उसकी परेशानी के बड़े बोल का अंत किया, एलिया तू बड़ा चढ़ा कर कह रहा था। अध्याय 19 पद 18 तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा, वे तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे छूमा है। सिर्फ मैं ही रह गया हूं, नहीं नहीं, सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, मैंने 7,000 इसराइलियों को बचा रखा है। परमेश्वर उनको जानता है, परमेश्वर उन्हें जांचता रहा है। अध्याय 19 पद 19 से लेकर 21 तक तब वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा।